ओम शांति, जोर से कहिए महसूस करते हुए, ओम शांति। सर जब कह रहे थे ना लास्ट सेशन में कि पत्रकारों को धड़ाधड़ सवाल पूछना चाहिए, तो मैं सर से कहना चाह रही थी कि दो दिन से इस शांतिपूर्ण वातावरण में सब इतनी शांति में चले गए हैं कि कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा किसी का, सब शांत हैं। लग रही है ना, महसूस हो रही है शांति जी? तो दीदी सम्मान कर रही है हमारे निकुंज भाई जी का, उनका बहुत सुंदर परिचय हम अभी देंगे। लेकिन सभा बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी आयोजन में, और जब पत्रकार इतने धैर्य से सुनते रहे, क्योंकि देखिए पत्रकार तो खुद ही ज्ञानी होते हैं, है ना, तो अगर वो ध्यान से हमको सुन रहे हैं तो उनकी प्रशंसा तो बनती है। तो सबसे पहले मैं निकुंज भाई जी की का गुणगान करूं, उससे पहले सभा का गुणगान करना चाहती हूं दो लाइनों के जरिए, क्योंकि आप लोग तीन दिन से यहाँ हैं और बिल्कुल धैर्य के साथ सुन रहे हैं, तो आप सबको समर्पित है, आप सबकी प्रशंसा में ये बात है कि हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ, विश्व को बदलने को तैयार हूँ। विश्व को बदलने के लिए तैयार हैं आप सब? तैयार हैं? तो हाँ मैं पत्रकार हूँ, विश्व को बदलने के लिए तैयार हूँ, कलम और माइक लेके निकला हूँ, कलम और माइक लेके निकला हूँ, तोप से भी टकरा जाता हूँ, क्योंकि मैं सत्य की ललकार हूँ, क्योंकि मैं सत्य की ललकार हूँ। तो आप सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि डबल सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, एक तो पत्रकार बने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आई, और दूसरा इस भगवान के घर में पहुंचने का सौभाग्य मिला। एक दिशा ईश्वर हमें दे रहा है कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो आप लोग डबल सौभाग्यशाली हो गए। तो जोरदार ताली एक बार बजा देंगे। हमारे बीच में एक बहुत ही महान पुण्य आत्मा इस वक्त निकुंज भाई मौजूद है, मैं उनका पहले परिचय दूंगी, फिर विषय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि हम किस विषय पे क्या बात करने वाले हैं। तो राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज जी 13 वर्ष की बहुत ही छोटी आयु में, कोमल आयु में इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का सफर शुरू किया। आप सोचिए कितनी महान आत्मा, पिछले जन्मों से भी पुण्य आत्मा, तपस्वी आत्मा, 13 वर्ष की आयु, जब बालक अबोध होता है, ऐसे वक्त में निकुंज भाई जी ईश्वर की राह पे, अध्यात्म की राह पर निकल पड़े, और आज 35 वर्षों की तपस्या के फल स्वरूप आप प्रचार एवं प्रसारण माध्यम का दिव्य फरिश्ता बनकर हमारे सामने इस वक्त उपस्थित है। मैं चाहती हूँ एक बहुत जोरदार करतल ध्वनि जो आपके हृदय से निकले और पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो जाए, ऐसी ताली आप बजाना आपको चाहिए। तो भाई जी के बारे में थोड़ा परिचय तो बहुत विस्तार में है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। तो भाई जी ने जो 35 वर्षों में सेवा की, खासतौर से मीडिया की बड़ी सेवा की, वो इस तरह से कि भारत का पहला आध्यात्मिक चैनल जिसको हम सब जानते हैं संस्कार टीवी शुरू हुआ था, तो संस्कार चैनल के निर्माण में निकुंज भाई जी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है, योगदान रहा है। ब्रह्मा कुमारीज की पहली इंटरनेट वेबसाइट www.brahmakumaris.org को भी आपके द्वारा ही 1998 में बनाया गया। आप सोचिए 98 में, जब डिजिटल मीडिया की कोई चर्चा भी नहीं थी, उस वक्त ब्रह्मा कुमारीज की पहली डिजिटल वेबसाइट भाई जी ने बनवाई। आपने ब्रह्मा कुमारीज की विश्वव्याप्त सेवाओं की पल पल की खबर देने के लिए एक सेवा ब्लॉग बनाया, जिसका नाम है www.bkseva.org। हम सब जानते हैं कि एक समय ब्लॉग का जमाना था, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाते थे, लोग जानते नहीं थे। उस जमाने में एक ब्लॉग भाई जी ने बनाया ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को विस्तार देने के लिए। 2009 में आपके द्वारा ब्रह्मा कुमारीज संस्था का पहला बिना विज्ञापन वाला YouTube पार्टनर चैनल शुरू किया गया। YouTube पे वो ब्रह्मा कुमारीज के नाम से है, आप सब ने देखा भी होगा और देख सकते हैं, जिसके माध्यम से देश और विदेश के ब्रह्मा कुमारीज के लाखों विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम घर बैठे देखने का लाभ मिला। आप एक विश्व प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि भाई जी ने अभी तक 9500 से भी ज्यादा आर्टिकल्स कॉलम लिखे हैं। आप सोचिए कितना अथक लिखना, हम सब जानते हैं कि हम अक्सर कहते हैं मूड नहीं होता ना, लिख नहीं पाता आदमी, मूड चाहिए, शांति चाहिए, हमें वातावरण चाहिए, लेकिन भाई जी ने इतने सारे, आप देखिए 9500 से भी अधिक कॉलम लिखे हैं, और जो देश विदेश के प्रमुख अखबारों और मैगजीन्स में प्रकाशित हो चुके हैं। निकुंज भाई जी अपने लेखन के माध्यम से मूल्य आधारित समाज के विकास में उनका जो योगदान है, उसके लिए उन्हें सिक्किम पुरस्कार 2023 में राइटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। वर्ष 2018 में आपको वर्ल्ड पीस कांग्रेस नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 84 देशों से पधारे विभिन्न क्षेत्रों के विश्व नेताओं की उपस्थिति में वर्ल्ड पीस मैसेंजर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। बहुत गौरव का विषय है। 2013 में आपको भारत के सुप्रसिद्ध यूनाइटेड राइटर एसोसिएशन द्वारा फेलो मेंबरशिप प्रदान की गई है। वर्ष 2023 में आपको वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा 64 देशों से पधारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपस्थिति में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का अवार्ड दिया गया है। तो मुझे लगता है तालियां तो बजती रहना चाहिए, इतने बड़े बड़े पुरस्कार भाई जी को मिले हुए हैं। और भाई जी को 2007 में ब्रह्मा कुमारीज की जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है उसके द्वारा गठित संगठन ग्लोबल इंटरैक्टिव मीडिया के अभिन्न अंग के रूप में देश और विदेश के बीच एक ब्रिज बनकर अंतर्राष्ट्रीय सेवा देने का भी उनका सौभाग्य उन्हें मिला है। आप ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में विविध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। अपने पॉडकास्ट और वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से विविध विषयों पर शिक्षाएं प्रदान करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके द्वारा किए गए पीस पॉडकास्ट के 2000 से अधिक पॉडकास्ट रील देश विदेश में लोगों के बीच प्रसारित हुए हैं। लोगों का एक मार्गदर्शन उन्होंने किया है शांति की दिशा में। आपने अपने 35 वर्ष के तपस्वी जीवन में लाखों आत्माओं को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया, साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को देखकर उन्हें रचनात्मक कार्यों में भी लगाया। इस विश्वविद्यालय के द्वारा कैसे चरित्र निर्माण होता है उसका आप सर्वोत्तम उदाहरण है भाई जी। तो हम इतने गौरवान्वित गर्वित हैं आपको अपने बीच पाकर। और एक बार फिर कहूंगी, जरा दिल से ताली बजाइए, इतनी महान तपस्वी आत्मा 35 वर्षों से राजयोग की जो खुद भी तपस्या कर रहे हैं और विश्व में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसी दिव्य आत्मा की दृष्टि भी मिल जाए तो जीवन सफल होता है। पूरे 45 मिनट उनके हमको मिले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज के इस सेशन का है, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का शब्द कोई हमारे लिए नया नहीं है, हम सब जानते हैं। ये इंटरनेट से मिली हुई हमें सुविधा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जिसे हम एक्स के नाम पे जानते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट का प्रसार करने के लिए, उस पर संवाद करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है सोशल मीडिया। और भाई साहब से मैं बातचीत की शुरुआत करूं उसके पहले एक बहुत छोटा सा आंकड़ा रखना चाहती हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया की ताकत क्या है। तो आप सोचिए, कुल जनसंख्या इस वक्त विश्व की 800 करोड़ के लगभग है, और इस 800 करोड़ की जो जनसंख्या है विश्व की, उसमें 566 करोड़ लोग, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एक स्टडी से मालूम पड़ा है कि कुल 800 करोड़ में से आप सोचिए कि 566 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। और ये आंकड़ा बिल्कुल नहीं चौंकाता, इतना बड़ा आंकड़ा क्योंकि बच्चे भी उसका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये आंकड़ा इतना बड़ा है। केवल युवा या समझदार लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आता है। भारत में भी जो जनसंख्या है 150 करोड़ के आसपास, उसमें भी 80 करोड़ लोग इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, रात दिन या तो वो रील्स देख रहा है, या वो रील्स बना रहा है, या तो वो खबरें उसमें दे रहा है, या उसमें से वो खबरें देख रहा है। तो आज का जो विषय है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एकता और विश्वास को बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए। अब बात जो भाई जी सोशल मीडिया की आती है, सबसे पहले तो फिर से एक बार पुनः स्वागत, आपको अपने बीच पाकर हम धन्य हैं, क्योंकि हम ज्ञान तो आपसे सुनेंगे ही, लेकिन योग की शक्ति भी ये सभा आपसे महसूस करेगी। तो ज्ञान और योग के डबल फोर्स से मुझे लगता है कि एक जो यहाँ मंथन होगा उसके अमृत का पान हम सब करने के लिए तैयार है भाई जी। सोशल मीडिया की बात भाई जी जब आती है तो हमारे माइंड में ना बहुत उसका यूज बहुत है, एक बड़ा आंकड़ा मैंने बताया, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया हम सुनते हैं तो कोई बहुत सकारात्मक एक तस्वीर मस्तिष्क में नहीं आती है। आजकल एक जुमला बड़ा प्रसिद्ध हो गया है कि कहने को तो ये सोशल मीडिया है पर यही लोगों को अनसोशल कर रहा है। घर में चार लोग हैं, चारों के पास फोन से, वो आपस में ही बात नहीं कर रहे, अनसोशल हो गया सोशल मीडिया पे जाके। क्या लगता है आपके क्या विचार है?
ओम शांति। तो मैं तो सोशल मीडिया हमारे लिए करीब एक वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई उसकी। हम तो अभी कहते हैं सोशल मीडिया रहा ही नहीं है, आज जो है वो है इन्फॉर्मेशन मीडिया। शुरुआत इसकी हुई थी वो एक नेक लक्ष्य के साथ हुई थी, और वो लक्ष्य था लोगों को जोड़ना, कि यदि आप इतिहास देखे कि फोन क्यों बना। हम उस जनरेशन से आते हैं जिन्होंने ट्रंक कॉल का अनुभव किया है। ऑपरेटर को कहते थे भाई आबू में फोन लगा के दियो या दिल्ली में फोन लगा के दियो, बीच में ऑपरेटर होती थी, बात करिए टक 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 टक, और वो सामने वाले का आवाज आता था। वो भी एक प्रकार से सोशल मीडिया का ही हिस्सा था कि दो व्यक्ति जो दूर है उनकी दूरी को कम करने का एक माध्यम था। वो कि जब मैंने आज से 25 वर्ष पूर्व इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिया था, वो प्रेजेंटेशन का नाम था ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि अभी फोन केवल फोन नहीं रहा, इसमें बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए तब वो था सोशल मीडिया, फिर उसके पश्चात बहुत कुछ आया, रेडियो आया, रेडियो में FM आया, पहले TV में सिर्फ हम देखते थे दूरदर्शन, भाई छाया गीत और फूल खिले गुलशन गुलशन, दो ही चीज, चित्रहार। फिर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो भाई ZTV बना। तो हर इन सब चीजों के पीछे लक्ष्य नेक था, परंतु धीरे धीरे जब कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो उसके पश्चात यह देखा गया कि ये कमर्शियल एक्सप्लोरेशन जब शुरू होता गया तो जो चीज आपके घर के हॉल तक सीमित थी वो आपके बेडरूम तक चली गई। और धीरे धीरे जब भारत में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का उद्गमन हुआ और बढ़ती गई, कोई कभी ये सोच ही नहीं सकता है कि मैं मेरे स्वजन जो है जिनको मैं बहुत स्नेह करता हूं उनको मैं देख सकता हूं क्या, ऐसा सामने सामने, वो भी 25 पैसा 50 पैसे में, ऐसा हो सकता है क्या। तब तक भी ये नेक था, परंतु जैसे हम कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य के लिए बनाई गई है ये, तो किसी ने ये तो नहीं सोचा रहेगा कि इससे किसी को दुख मिले या इससे किसी को डिप्रेशन आए। परंतु किसी भी चीज की अति जो है वो अंत को निमंत्रित करती है। तो जब हमने देखा कि फोन मोबाइल फोन जो है उसका शुरुआत में तो इसीलिए उपयोग होता, अर्जेंट कुछ काम है उसके लिए, बट आज क्या बन गया भाई, टॉयलेट में भी लेके जाते हैं, इसके लिए तो मोबाइल फोन बना ही नहीं था।
कितने लोग ले जाते वॉशरूम में भी, पत्रकारों को ले जाना पड़ता है, बॉस का फोन आएगा उसको डर रहता है कि नहीं कॉल उठाया तो नौकरी ना चली
जाए। कौन बाथरूम में फोन लेके जाते, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, सच बोलो, ईमानदारी से बाथरूम में भी लेके जाते। अच्छा, कौन ऐसे जो अपना तकिए के नीचे या तकिए के बाजू में फोन रख के सोते हैं या पलंग के बाजू में, हाथ खड़ा करो, देखो बहुत सारे। तो ये तो अभी प्रूव है कि इससे कैंसर होता है, काफी रिसर्च पेपर ये प्रूव कर चुके हैं कि इसमें जो रेडिएशन निकलता है, और रात को इसीलिए फोन आपको बंद कर देना चाहिए या कम से कम आप जहां हो सोते हो उससे 20 फुट दूर रखना चाहिए। तो ये आज हम सोशल से, परंतु अभी ये सोशल मीडिया ना रह करके इंफॉर्मेशन मीडिया इसीलिए बन गया कि आज आप क्या सोच रहे हो या आप क्या सोचने वाले हो वो भी उन्होंने पकड़ लिया है। मान लीजिए आज आपको विचार आया कि मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ ढूंढूं, लेना नहीं है आपको कुछ, जस्ट आपने सोचा कि मैं ढूंढूं कुछ उसके लिए, कोई टी शर्ट ढूंढूं या कोई चप्पल स्लीपर ढूंढूं, आपको रात तक इतनी सारी चीजें उस कनेक्शन में आ जाएगी, आपको चाहिए नहीं वो, परंतु उसको पता चल गया, जिसको आज की मॉडर्न भाषा में कहते हैं एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम बेस्ड भी चीज बन गई है जो ह्यूमंस के बिहेवियर को इस कदर इसने भाप लिया है कि मान लीजिए आपने आज लिया नहीं फोन को, क्या मालूम आपने क्यों नहीं लिया। हो सकता है आपके मन में आया होगा कि आज मेरा इतना कैपेसिटी नहीं 1000 रुपए का टी शर्ट लेने की, बट मैं जरूर लूंगी मेरे बेटे के लिए। बट कल आपको 4 ऑप्शन देगा थोड़ा सस्ते वाले जो आपको परवड़ता है, उसने आपका मन भाप लिया, आपकी फीलिंग्स भाप ली। तो इसीलिए सोशल न रहकर के अभी इंफॉर्मेशन मीडिया बन गया है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है। और ये इसीलिए अपने आप में घातक इसीलिए कि जब हमारी सोच ही कोई पता कर ले तो थोड़ा सा इसके अंदर एक फ्यूचर में प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि फिर सोचने में भी डर लगेगा, और आज वही हो रहा है कि सोशल मीडिया जो आपने नाम लिया, चाहे ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि इत्यादि, मैंने एक कॉलम लिखा था बड़ा प्रचलित, और मुझे उस पर बहुत सारे युवा स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में, उनके मुझे 1000 के ऊपर ईमेल आए थे। सोशल मीडिया डिप्रेशन, ये मेरा विषय था कॉलम का। तो आज सब कुछ लाइक्स के ऊपर, व्यूज के ऊपर हमारी जिंदगी बन गई। किसी ने कुछ पोस्ट किया तो उनको अपेक्षा रहती है कि मेरा ये सब देखे। तो क्विक पॉपुलर होने की जो लालसा है, क्विक पॉपुलर होने की जो अंदर की इच्छा है, वो जब पूरी नहीं होती है, तो हम बहुत पढ़ते हैं डिप्रेशन के कारण, उनको लाइक्स नहीं मिलती है, फ्रेंड्स नहीं मिलते, तो सुसाइड करने पर भी आ जाते हैं। ये अभी उस लेवल पे चली गई है चीज, जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इसी विषय पे, और मैंने कहा था ये खराब चीज नहीं है, बशर्ते आप इसको लिमिट में यूज करो। आप कोई ये नहीं कहता है कि शक्कर खाना खराब है, परंतु आप भोजन में मिठाई तो नहीं खाओगे ना, बहुत कुछ खाओगे, दाल चावल सब्जी, तो इसीलिए संतुलित मात्रा में ये ठीक है, बट अति में घातक है।
बहुत अच्छी बात भाई जी ने बोली आज की, सोशल मीडिया नहीं इन्फॉर्मेशन मीडिया हो गया है, और इन्फॉर्मेशन लेने देने का काम ज्यादा कर रहा है, और इतना घातक है कि मन को भी पड़ रहा है। उसमें एक माइक्रोफोन होता है जो सुनता भी रहता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें सुना जा रहा है, और फिर वो डेटा मार्केट में जाता है और हमें चीजें दिखने लगती हैं। और भाई जी मैं बताऊं आपको, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, जितने भी बड़े लोग हैं जिनको हम सो कॉल्ड वीवीआईपी कहने लगे हैं, वो रखते ही नहीं है स्मार्टफोन, वो चाहते नहीं कि सोशल मीडिया सुने उन्हें, वो कोई कीपैड के जमाने में चले गए, छोटा सा फोन रखते हैं, उनको नहीं चाहिए सोशल मीडिया, प्राइवेसी का खतरा। तो भाई जी ने जहां बात खत्म की, वहीं से एक सवाल भाई जी मन में आता है, एक बहुत ट्रेंडिंग शब्द हम सुनते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर इतना ज्यादा है। जैसे आपने कहा लाइक्स चाहिए उसको, वहां पे उसको एप्रिसिएशन चाहिए, तो ये जो फोमो है ये इतना बैठ गया है, वो देख रहा है सोशल मीडिया पे कि लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके आसपास के, उसको लगता है मैं पीछे छोटा हूं, मैं क्या कर लूं कि मैं भी इसमें यहां वायरल हो जाऊं, ये वायरल होने की जो चिंता है उसकी, इसका निदान क्या है भाई साहब?
तो फोमो का परिणाम स्वरूप हो गया फोगो
जी,
फियर ऑफ गोइंग आउट। मेरे को एक 14 साल की बच्ची मिलने आई थी, और स्कूल में पढ़ने वाली, और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट शुरू किया, और वो एक ही चीज करती थी, ये जो बारबी डॉल होता है उसके जैसा तैयार होकर के अलग अलग पोज में अपना फोटो डालती थी, बट मिलियन पर सेम उसी के जैसा दूसरा अकाउंट, उसको 2 मिलियन फॉलोअर, उसको देखकर ही प्रभावित होकर के, एक विदेशी बच्ची थी, उसको देखकर ही उसने शुरू किया था, बट उसको मिला ही नहीं। आप मानेंगे नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, 11 किलो उसका वजन कम हो गया, 14 साल की बच्ची आंखों के नीचे सारा काला काला हो गया, और बोलना बंद कर दिया और बाहर जाना बंद कर दिया, रूम से बाहर ही नहीं आती। फिर उनका माताजी कैसे भी करके जबरदस्ती ले आई, मेरे से मिली, मैंने फिर उनसे बात किया, बोलने को ही तैयार नहीं, नीचे ही देखे, ऐसा ऊपर उठ देखे नहीं। फिर जब उनको हमने दिखाया कि आपका मैंने देखा है, तो बड़ा आप तो सुंदर लगती हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बारबी डॉल है कि आप हो, तो उसने बोलना शुरू किया और फिर रोने लगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि, और इसीलिए मैंने एक जगह कहा था अभी मेरे टॉक में, कि ये जो एक शब्द है इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो बहुत सारे बन गए अभी, तो आप उनसे, वो आपको इन्फ्लुएंस करने का लिए उन्होंने अपना बनाया, परंतु इतना भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है जो आप अपनी खुद की पहचान ही खो दो
जी।
तो इसीलिए मैंने एक शब्द दिया, मेरा एक यूनिवर्सिटी में टॉक था, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, इंस्टेड गेट इंस्पायर्ड। इन्फ्लुएंस क्यों होना है आपको, इंस्पायर हो जाओ, प्रेरणा लियो, प्रभावित नहीं होना है।
बहुत अच्छी बात।
और इसीलिए आप देखो तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, काफी प्रचलित किस्सा ये रहा है, समय रैना नाम सुना होगा आपने
जी, जी।
एक स्टैंड अप कॉमेडियन,
बहुत चर्चा में रहे बीच में भी,
इतना गंदा और भद्दा, उनके एक इंडियाज गॉट लेटेंट शो था, उसमें आप बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ऐसी अभद्र भाषा में उन्होंने माता पिता के लिए बात कही थी। फिर तो बहुत कुछ उनके ऊपर केसेस हो गए, सब हो गए, एक साल गायब रहे। अब वो भाई साहब उसी शर्ट में वापस आते, बड़ा ऑडिटोरियम लेकर के, करीबन 5000 जितने पब्लिक, और उसका उन्होंने टाइटल दिया स्टिल अलाइव। ठीक है, 5 करोड़ लोगों ने 24 घंटे में, 5 करोड़ लोगों ने, तो कई जो पंडित है वो कहते हैं सोशल मीडिया का पावर देखो, पर मैं ये सोच रहा था कि देश का स्तर कहां आ गया है। ऐसे लोग जिस देश में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे महान नायक हुए हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, 24 घंटे में 5 करोड़ लोगों ने देखा, तो इनसे प्रेरित होते हैं लोग, क्या अपन कुछ भी गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, थोड़ा टाइम सब होगा, फिर पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, फिर वापस हम वही गंदगी करेंगे। ये ट्रेंड थोड़ा खतरनाक हो गया।
बहुत अच्छी भाई साहब आपने बात रखी है इस विषय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मैं समय रैना की बात निकली तो बताना चाहती हूँ, सभा में मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, सर बैठे हैं परमार सर, कि उनके पिताजी बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। जो समय रैना है उनके पिताजी, वो कश्मीर से वो लोग विस्थापित हुए, और उनके पिताजी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो इस मुद्दे से दूर ही हैं, लेकिन फिर भी एक पत्रकार का बेटा आज क्या कर रहा है इस पे भी हमको देखना होगा। हम समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं, कहीं अपने घर की दशा और दिशा तो नहीं बिगड़ रही, ये हमको देखना होगा। भाई साहब मैं, हम सारे भाइयों
मुझे खाली एक बात बोलनी, मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को हंसाइए, कपिल शर्मा भी करते हैं शो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब माता पिता के बारे में गंदे से गंदी टिप्पणी करके फेमस होना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, दूसरे बच्चे भी सीखेंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है।
जी जी, बहुत सुंदर बात कही भाई साहब। मैं अभी अपने ही भाई बहनों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ भाई साहब। जैसे आपने बच्चों का भी जिक्राया, एक बच्ची का आपने अनुभव भी बताया कि कैसे वो नकल करने के चक्कर में डिप्रेशन में चली गई। अभी हम बहुत खबरें देख रहे हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, घर के लोगों को भी पता नहीं बच्चा क्या देख रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ देखा है, साइबर पुलिंग का भी वो शिकार हो जाता है सोशल मीडिया पे, और फिर वो कई बार सुसाइड तक चली जाती है बात। हम सब लोग ऐसी हृदय विदारक घटनाओं की कवरेज करते ही रहते हैं, हम सबको सामना करना पड़ता है ऐसी खबरों का। तो मैं आपकी तरफ से एक मार्गदर्शन ये चाहती हूँ सभा के लिए कि जब ऐसी खबरें हम कवर करने जाएं कि बच्चों ने सुसाइड किया है, बहुत घटनाएं हुई पुणे में, देखो आप मुंबई में, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, तो हम सारे पत्रकार जब ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करें तो क्या आपको लगता है कि हमको साथ में, हमारे को ये पढ़ाया गया है न्यूज विदाउट व्यूज, हमको कोई व्यूज देना नहीं है, न्यूज जैसी है वैसी ही देनी है, लेकिन ऐसे मामलों में क्या आप ऐसा सहमत है, कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जब हम ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करें तो हम साथ में क्या एक कॉलम अपनी तरफ से लिखें कि माता पिता को कोई गाइडेंस हम दे पाए, बच्चों को हम कुछ बता पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
जी बिल्कुल करना चाहिए, और खबरें जो है जैसी है वैसा ही दिखाना चाहिए, मैं उस पक्ष में हूँ। पर आज की तारीख में जिस प्रकार से पुलिस, डॉक्टर, उसके साथ साथ पत्रकार भी मैं जोड़ूंगा, पत्रकार को भी आज की तारीख में काउंसलिंग करना चाहिए, केवल पत्रकारिता नहीं अपितु साथ में काउंसलिंग भी करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है वो बेचारे इतने भयभीत है, इतने चिंतित है, ऐसे में पत्रकार अपनी एक काउंसिलर के रूप में भूमिका यदि अदा करे तो भी सोसाइटी में बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे पास एक उत्तर प्रदेश के एक भाई आते थे, फैमिली, एक बच्ची, माता और पिता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, हाल का अभी का 15 दिन पहले का किस्सा है, और वो ड्राइवरी करते हैं। उनकी बेटी जो आप देखो तो एकदम आपको ऐसे लगे कांच की पुतली, 11 साल की बच्ची, चूंकि झुग्गी झोपड़ी में रहते तो एक लड़का बार बार पीछा करता था तो कुछ उसने दाद नहीं दिया। फिर एक दिन मौका देखकर लड़के ने कहा कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत अस्पताल में बुलाया है, तो उसको लड़का लेके गया, उसको कुछ नाक में सूंघा दिया, कहां चली गई उसको कुछ पता ही नहीं चला। माता पिता यहां चिंतित, और पुलिस में कंप्लेंट किया, पुलिस भी ढूंढे, 2 दिन चार, फिर हमारे पास आए। मैंने मुंबई में दैनिक भास्कर के जो संपादक है उनसे बात किया, देखो ऐसा ऐसा है और ये तो गरीब लोग हैं, ये क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं कमिश्नर से बात करता हूं। संपादक जी ने दैनिक भास्कर के मुंबई में उन्होंने संपादक से बात, पुलिस कमिश्नर से बात किया। पुलिस कमिश्नर ने ताबड़तोब डीसीपी को एक केस दिया और पैन महाराष्ट्र सभी जगह सीसीटीवी कैमरे का फुटेज एक करके उनको पता चला कुर्ला टर्मिनस मुंबई में, वहां से लड़की और लड़की पहुंच गई थी कलकत्ता। परंतु उसके साथ फिर मैंने दूसरे एक मराठी दैनिक है लोकमत करके, उनके भी एडिटर को मैंने जोड़ा। ये दो संपादकों ने बच्ची को सकुशल वापस लाया।
बहुत अच्छी।
मैं माफी चाहता हूं, मुझे किसी की टीका नहीं करनी है। अगर पत्रकार नहीं पढ़ते थे तो शायद बच्ची बिक चुकी होती थी। माफी चाहता हूं ये मैं बोलने के लिए, परंतु वो लड़का इस प्लान से उठा के गया था। बात यहां पूरी नहीं होती, आने के बाद वो लड़की इतनी सहमी हुई थी, दो दिन तक तीन दिन तक स्नान पानी कुछ नहीं खाया पिया कुछ नहीं, हाथ बांधे हुए थे, सीट के नीचे उसको रखा था। बात यहां पूरी नहीं होती है, पुलिस ने कहा स्टेटमेंट देना पड़ेगा और उसको पहचानना पड़ेगा, वो जाने को तैयार ही नहीं। डरे रोए माताजी लेके आई। पुनः मैंने दोनों संपादक को फोन किया, देखो ये ऐसे ऐसे इनको डर लग रहा है। उन्होंने कहा हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में,
संपादकों ने।
वाह, आप चिंता नहीं करो, हम जाएंगे, हम पांच मिनट हम साथ में खड़े रहेंगे, पहचान लेंगे, हम लेके आ जाएंगे इसको। ये पत्रकार है, मैं बोल रहा हूं मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे, मुझे भी अंदर, पहले तो मुझे आया ये करेंगे क्या मदद, बट किया। तो ये भूमिका अभी सोशल ट्रांसफॉर्मर्स की भूमिका में भी पत्रकार को आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्रशासन को डर रहता है। इसीलिए एक बार मालूम पड़ गया है जर्नलिस्ट है, वो उनको मदद करनी पड़ती है।
भाई साहब, मैं बहुत गंभीरता के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ ये बात इस मंच से कह सकती हूँ कि सभा में जितने भी पत्रकार बैठे हैं, निश्चित ही किसी न किसी के जीवन में ये क्षण जरूर आया होगा कि उन्होंने इसी तरह से समाज के किसी अंतिम व्यक्ति की मदद की होगी। आप सहमत हैं? आप सबके साथ कोई ना कोई घटना जरूर होगी, मुझे पूरा यकीन है। देखिए कितने सारे, आप अपने लिए साली बजाइए, मेरे खुद ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भाई जी जब बता रहे तभी मैं महसूस कर रही थी, और आप जब हाथ खड़े कर रहे हैं तभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि कितना बड़ा दिव्य रोल जर्नलिस्ट समाज में निभाते हैं। बात भले सोशल मीडिया की हो रही है लेकिन वो भी जर्नलिज्म के बिना अधूरा है। एक बात इसी को आगे बढ़ाती हूँ भाई जी, आपसे बात करने का तो इतना मतलब, एक रियल आप उसमें केस स्टडीज भी बता रहे हैं तो एक उसका अलग ही आनंद आ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती हम पत्रकारों के साथ ये हो गई है इस वक्त कि कल से चर्चा हम सुनी रहे हैं, परमार सर बैठे हुए हैं, राजेश सर बैठे हुए हैं, सोमनाथ भाई बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सब ये इंस्टीट्यूशन है अपने आप में पत्रकारिता के। हम सब ने पढ़ा और हमने महसूस किया, मैंने भी प्रिंट मीडिया से शुरुआत की थी अपने करियर की, तो हमने ये देखा कि पूरा एक सिस्टम होता है। गेट कीपर एक शब्द हमको पढ़ाया जाता था, गेट कीपर ऐसे सुनने में लगता है कोई चपरासी चौकीदार की बात हो रही है, लेकिन गेट कीपर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है मीडिया में। कोई भी खबर आती है तो वो प्रसारित नहीं हो सकती, कई लेवल की गेट कीपिंग होती है, सब एडिटर्स होंगे, एडिटर्स होंगे, कॉपी एडिटर होगा, वो पढ़ते पढ़ते चढ़ते चढ़ते मक्खन निकल के ही जाता है, बहुत विश्वसनीयता के साथ जिम्मेदारी के साथ जाता है। सोशल मीडिया के युग में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर सिटीजन जर्नलिज्मशिप एक शब्द आ गया है, नागरिक पत्रकारिता हर कोई पत्रकार है, लेकिन वहां गेटकीपिंग नहीं है, वहां वो जिम्मेदारी नहीं है, वहां तो आप डिलीट करने का ऑप्शन है, तुरंत डिलीट कीजिए, माफी मांगिए। ये एक बड़ा एक डरावना सत्य इस वक्त सोशल मीडिया का है। हम सारे पत्रकार रोज रूबरू होते हैं, हम खबर देने में हमें थोड़ा सा समय लगता है, हमें क्रॉस चेक करना होता है, डबल करेंगे हम, ट्रिपल करेंगे क्रॉस चेक, क्योंकि हम नहीं चाहते खबर गलत हो, लेकिन सोशल मीडिया पे फट ऐसी खबरें आती हैं, समाज में वैमनस्य फैलता है, क्राइम का एक माहौल बनता है, डर का भय का माहौल बनता है। इसको कैसे हम सारे पत्रकार ट्रीट करें, कैसे हम इसका सामना करें, कोई आपकी तरफ से हमें कोई टिप्स मिल जाए इस पे?
तो जिसको हम कहते हैं फ्लैश न्यूज, क्योंकि दो लाइन ही आ सकती है, आप ज्यादा तो कुछ फोन में क्या पढ़ेंगे, परंतु मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो देखते हो उसकी जांच किए बिना एक एंग्जाइटी में आकर के फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में भारतवर्ष में कौमी हिंसा जो हुई है उसमें कहां ना कहां विशेष रूप से व्हाट्सएप जो है और टेलीग्राम इनके अंदर जो भी चैनल्स चलते हैं उसमें कुछ भी मतलब जिसके मन में आया अच्छा डॉक्टर्ड इमेजेस भी होती है। डॉक्टर्ड इमेजेस मतलब कहां का इमेज कहां इस देश का है भी नहीं इमेज परंतु कहां का इमेज यहां का बना करके देखो इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है वो है किसी और देश का। तो इसीलिए थोड़ा सा हम हमेशा सभी को कहते हैं विशेष पत्रकारों को कि अपना विवेक बुद्धि जो है उसका इस्तेमाल करके उसके पश्चात किसी खबर को चलानी चाहिए और फॉरवर्ड करनी चाहिए। मैं देखता हूं आजकल कई प्रिंट माध्यमों में कई बार अभी पहले जैसा तो है ही नहीं तो समय नहीं रहता तो यहां वहां से कुछ मिलता तो वही उठा के छाप देते हैं
जी।
ये थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड है। जांच करिए मूल रूप से जर्नलिस्ट जो है उनका काम ही है रिसर्च करना जांच करना उसके बाद फॉरवर्ड करिए अन्यथा आप जिम्मेवार बन जाएंगे कोई बड़ी घातक घटना को अंजाम देने के लिए तो ये नहीं करना चाहिए।
ये AI पे बहुत चर्चा हो रही है पूरा सेशन ही है तो हम लंबी बात नहीं करेंगे फिर भी लेकिन मैं चाहती हूँ आप टच करें इस टॉपिक को कि AI इतना शक्तिशाली टूल है लेकिन उसका नेगेटिव यूज बहुत होता है। हमने देखा प्रधानमंत्री को भी लोगों के साथ डांस करते हुए AI बना दिया वो वीडियो बनाया लोग पहचान ही नहीं पाए सत्य क्या है किसी के भी साथ हो सकता है ये तो हम कैसे इसका सामना करें। विश्व की जो ये परिस्थितियां हैं टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है कि मनुष्य बौना नजर आ रहा है उसके सामने।
देखिए मैं जैसे कुछ समय पहले कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं है तो मैं एक चीज में बिलीव करता हूं स्पष्ट रूप से और वो चीज है मैन बिहाइंड द मशीन। कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने वाला मनुष्य अपने आप नहीं बनी है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक बात है हमने 2 साल पहले इसके ऊपर एक भाष्य भी मैंने किया था कि आज टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की टेक्नोलॉजी वो किस चीज पे बेस्ड है प्रॉम्प्टिंग पे। प्रॉम्प्ट बना हिंदी में भाई कहो उसको
जी।
आप प्रॉम्प्ट करने वाला कौन इंसान है अर्थात जिम्मेवारी मेरी बन जाती मैं उसको ये कहूं कि मुझे भाई 10 अच्छी अच्छी गालियां बताओ कौन सी है तो मुझे बताएगा। मैं उसको ये कहूं कि मुझे भारत देश की महिमा बताओ तो मुझे वो बताएगा। मैं जो कहूं वो मिलेगा। तो इसीलिए मैन बिहाइंड द मशीन अपने आप में कोई भी टेक्नोलॉजी यूजेबल नहीं है अनलेस देर इज ए यूजर। तो ये जो नैतिक जिम्मेवारी है ये यूजर के ऊपर है इस्तेमालकर्ता के ऊपर है। वो अगर विनय और विवेकी है तो मैं नहीं समझता कोई टेक्नोलॉजी खराब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान है मेडिकल फील्ड के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान है एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत सारी फील्ड के लिए सचमुच ये वरदान है। कई सारे हमारे विशेष भारत देश के जो गरीब हमारे लोग हैं जिनको आज आवश्यकता न होने पर भी कई टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है वो ये AI टेक्नोलॉजी से काफी मात्रा में उनके पैसों की बचत होगी। एक्यूरेट उनको मेडिकल डायग्नोसिस होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड प्रोवाइडेड इट इज यूज लेजिटिमेटली एंड केयरफुली। खराब नहीं है।
जी 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 बिल्कुल। कल एक इसी मंच से बात हुई थी कि अगर चैतन्य मीडिया जड़ मीडिया को अच्छे से कंट्रोल करे तो सब हमारे काबू में ही है। भाई जी ने कितनी अच्छी बात बोली भले वो कितना पावरफुल टूल है चलाने वाला तो मनुष्य है बनाने वाला तो मनुष्य ही है।
आप ये भूलना नहीं मैन बिहाइंड द मशीन अपने आप नहीं चलती है चीज।
जी जी भाई जी जो आज का टॉपिक है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एकता और विश्वास बढ़ाने में कैसे करें आज विश्व में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का ही है। कोई किसी पे भरोसा नहीं करना चाहता और इसी विश्वसनीयता के संकट के कारण एकता को खतरा है लोग एक हो ही नहीं पा रहे। घर में हम देखते हैं 5 भाई हैं उनमें भी एकता हमको नजर नहीं आती। एक समय था लोग मिलजुल के रहते थे ज्वाइंट फैमिलीज थी हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ चले गए और कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कटने लगे। तो ये सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल हो पॉजिटिव वे में कि एकता और विश्वास को बढ़ावा मिले।
खेती करिए किस चीज की वो तो बताया नहीं मैंने। व्हाट्सएप की खेती करिए अभी बजाओ ताली। आप में से कितने लोगों ने ये शब्द सुना है व्हाट्सएप फार्मिंग किसी ने नहीं। भारत में बड़े से बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है उनके जो विश्लेषक है और पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट पीआरसी उनका इंटरव्यू बीच में आया था, एक पॉडकास्ट था, वो बहन है, उन्होंने बहुत विस्तारित रूप से बताया था कि भाई किस प्रकार से व्हाट्सएप फार्मिंग की मदद से हम लोग समूचे समाज की जो मंशा है उसको परिवर्तित कर सकते हैं और किया है। अब कैसे, बिल्कुल जैसे खेती करते हैं, खेती की जितनी जमीन लेते हैं और उसमें एक बड़ा पतरे का शेड बना देते और एक साथ 2,000-3,000 पीसी और ऑपरेटर पर डे 500 रुपया सबको एक ही काम करने का, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करो। तो मैं ये कहता हूं कि विश्व के अंदर यदि एक चिंगारी से युद्ध लड़ाया जा सकता है तो एक चिंगारी से क्या शांति नहीं हो सकती। तो यदि हम सब हरेक के पास व्हाट्सएप है, हरेक के व्हाट्सएप में कम से कम 100 नंबर तो होंगे ही, बरोबर। क्या आप अपने 100 नंबर में से 20 नंबर को रोज कोई अच्छी चीज नहीं भेज सकते? बोलो हाँ या ना, जो समझते हाथ खड़ा करो। कुछ भी, मैं ये नहीं कहता हूं ब्रह्मा कुमारी से कुछ आता हो भेजो, कोई अच्छा चीज भेजो। तो हम लोगों ने यहां इसी ज्ञान सरोवर में आज से 2 दशक पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से एक महिला आई थी पत्रकार, उनकी हाजिरी में हमने ये लॉन्च किया था गुड न्यूज। रोज आप अपना व्हाट्सएप में जितने मेंबर है उसमें से 20% को आप अच्छा कुछ भेजो ना, 100 भी नहीं कह रहा हूं मैं तो 20 बोल रहा हूं। तो ये खेती शुरू करो, सब व्हाट्सएप किसान बन जाओ, तो चेंज धीरे धीरे आना शुरू होगा अगर हम अच्छा भेजना शुरू करेंगे तो। पर हमको टेम्पटेशन है, जो ही कुछ सनसनी खे जाए तो ये भी मैं जल्दी भेज दूं, वो अंदर मन मचलता है। करो, वो आपका प्रोफेशन का काम है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूं, परंतु साथ में अच्छा भी तो कुछ दियो ना, जो बेचारा वो याद रखे। नहीं तो आजकल फोन लेकर के भी वो नोटिफिकेशन, लोगों को डर लगता है क्या आया रहेगा, कुछ अच्छा है कि नहीं। कुछ अच्छा दियो जो आपका इंतजार करे हो, अभी 9 बजा इनका आया नहीं कुछ। ये है आप लोगों की गुडविल,
बहुत अच्छी बात बोली। सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम कुछ ऐसा भेजे रोज कि लोग उसकी प्रतीक्षा करें कि अरे आज इन्होंने क्यों नहीं भेजा। फोन लगा के पूछे, भाई साहब तबियत तो ठीक है, भेजा नहीं आपने आज? भाई जी के ताली तो बननी चाहिए, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे लिए।
देखो मीडिया में आओ किसान बन के जा रहे हो।
हाँ नहीं, अच्छी बात है। अभी अब बताइएगा अनुभव, मैं क्योंकि समय भाई जी का जल्दी से ले लें अपन, फिर क्या इतनी योगी महान आत्मा हमको आसानी से नहीं मिलती। मैं जल्दी जल्दी सत्र को खत्म करूंगी इस समय, क्योंकि अब घंटी बजा रहा है। भाई जी आजकल सोशल मीडिया स्टेटस सिंबल से जुड़ गया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग मतलब बाहरी आवरण शेयर करते हैं, बहुत अच्छा जीवन बताएंगे, खुश दिखेंगे उसमें, और महंगी महंगी चीज, लोग तो खाने का भी फोटो खींचते हैं। कई लोग रेस्टोरेंट जाते हैं पहले बोलते हैं रुको रुको खाना मत कोई भी, पहले वो फोटो खींचते हैं अपनी थाली की और फिर उसको अपलोड कर देते हैं। मतलब स्टेटस लगाना स्टेटस सिंबल हो गया। क्या हम आध्यात्मिकता को अपना स्टेटस सिंबल बना सकते हैं?
देखिए मैं इसमें एक कॉशन के साथ कहूंगा, कई लोग क्या होते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है फैनेटिक, कोई भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें मैं मानता हूं वो सबको मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हरेक को हक है अपने हिसाब से जीने का, हरेक को हक है अपनी मान्यता अनुसार किसी को मानने का। जहां तक आध्यात्मिकता की बात है, आपको कुछ ऐसा लगता है कोई आपका भाई आज का सुवाक्य है, आप रख दो अपना स्टेटस पे। पर कई लोग क्या करते हैं, फिर जबरदस्ती करते हैं, मेरा भेजा क्या आपने, कितनों को भेजा। हम अवश्य रखें, अच्छी चीज जो है उसके लिए हर एक को अंदर रहता है कि हम अच्छी चीज खाए पिए देखे, परंतु पेशेंस रखना पड़ता है। कई लोग हमारे पास भी यहां कहते हैं कि देखो हमने इतना अच्छा ये बनाया है भाई, आज का सुवाक्य कोई देखता ही नहीं, वो सबको पिक्चर का गाना सुनना है, सबको ये सुनना है वो देखना, ठीक है ना। जिसका भाग्य होगा उसको ही मिले। देखो आजकल खाने में ऑर्गेनिक वो जो आता है ऑर्गेनिक आटा वगैरह वो महंगा होता है
जी।
तो ऐसे आध्यात्मिकता जिसका भाग्य में है, महंगी चीज है, भाग्य में उसको मिलेगा। आप उसमें मन छोटा मत करो, आपको जो अच्छा लगता है अवश्य करना चाहिए। अपना स्टेटस पे कोई ना कोई सुवाक्य रखो या कोई ऐसी चीज रखो जो लोग देख करके प्रेरित हो।
भाई जी हमारा ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो इसी सोशल मीडिया को ही लेकर मैं आपसे चाहती हूँ आप एक प्रकाश डालें कि हम ये सभी सारी मुझे लगता है धार्मिक संस्थाओं ने ऐसे स्लोगन दिए हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, वो अपने पे ही केंद्रित है और हमारा तो है ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं देखिए जौहरी की दुकान में आए हैं हीरा खरीदने, और हीरा खरीदने मुट्ठी भर लोग ही खरीद सकते हैं क्योंकि सबकी क्षमता नहीं होती। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ मिलती है हमको, लेकिन सुनार की दुकान में सिलेक्टेड लोग पहुंचते हैं। तो एक बार आप सब ताली बजाइए, आप वो सिलेक्टेड आत्माएं हैं जो हीरा खरीदने की और स्वयं को हीरा बनाने की ताकत रखती हैं। तो इस सोशल मीडिया का सदुपयोग हो विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए, विश्व भाईचारे के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। तो हम व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल्स ऐसा क्या करें कि स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन के वाहक बन जाएं।
मैं एक जरूर कहूंगा कि यहां से जाने के पश्चात अगर आप लोगों को योग्य लगता हो, अच्छा लगता हो, आप लोग जरूर अपने अपने माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप चैनल, चाहे टेलीग्राम का चैनल या चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, आज यहां समझो 200 के करीब लोग आए हैं या 300 के करीब आए, वो जरूर आप लोग बनाओ और उसको हर एक नाम दियो गुड न्यूज।
बनाएंगे ना, कितने लोग बना सकते हैं, ताकत है,
पॉजिटिव बात करने की। अगर अच्छा लगे तो करो, जबरदस्ती नहीं है परंतु ये आपको प्रेरित करेगा क्योंकि आपने बनाया ना, आपको रोज उसमें कुछ ना कुछ डालने के लिए अंदर इच्छा होगी और सुनने वालों को भी इच्छा होगी, पढ़ने वालों, इसीलिए ये दोनों तरफ काम करेगा। ये आप यहां से जाने के पश्चात इतना हमको जैसे दक्षिणा आप ये दियो,
दक्षिणा देंगे और सभी मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं, हम बहुत योग्य शक्तिशाली समर्थ आत्मा है, भगवान ने हमें अपने घर में बुलाया। और मैं भी शांतनु भाई जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप भी उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार निकुंज भाई जी के लिए बजा दीजिए, ताली ऐसी बजाओ कि ब्रह्मांड गूंज जाए। इतना पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, मैं बिल्कुल हम क्योंकि मैं उसी पक्ष की हूँ भाई जी, मैं उस मंच से जरूर उधर सभा से जरूर मंच पे बैठ गई, शांतनु भाई जी ने अवसर दिया, मैं हूँ उसी पक्ष की जो सब भाई हमारे बैठे हैं बहने, तो हम सबको पता है।
बोलना है आपको,
एक मिनट बस बात खत्म करती हूँ कि इतना सकारात्मक चिंतन मैंने देखा नहीं किसी सभा में होते हुए, वो ब्रह्मा कुमारीज में ही हो सकता है। तो एक बार ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, इतना अच्छा भोजन, इतना अच्छा परिसर, इतना अच्छा विषय और इतने महान दिव्य वक्ता हमको मिलते हैं, ये दुनिया में कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग अपनी बात कहें, मैं दो लाइन में बात समाप्त करती हूँ, निकुंज भाई जी को समर्पित करती हूँ दो लाइनें और आपको भी समर्पित है साथ साथ, जो इनको देख के महसूस होता है और हमारे शांतनु भाई को देख के भी हमको महसूस होता है, भाई जी खड़े हैं पीछे तो अच्छा है, सुन लेंगे उनके प्रति क्या भाव है हमारे, कि अपनी मौज फकीरी है। कैसे है पता आपको, फकीर वो फकीर नहीं, फकीर के दो अर्थ होते हैं, फकीर को लोग सोचते हैं वो कटोर लेके चलता, वो नहीं, एक होता है वो भगवान में रमण करने वाला, उसी में घूमने वाला, वो बिल्कुल रूहानी। तो अपनी मौज फकीरी है, छूती पांव अमीरी है, इन सबके चरणों में इतनी दौलत है कि कहां पहुंच जाए, लेकिन इनको नहीं चाहिए, उसको छोड़ के उपराम होके सब कुछ छोड़ के विश्व की सेवा पे निकली हुई आत्मा है शांतनु भाई निकुंज भाई। तो अपनी मौज फकीरी है, छूती पांव अमीरी है, मन है तुलसी जैसा, महसूस तो कर रहे होंगे तुलसी कितनी पवित्र होती, आंगन में लगाओ पवित्रता का भाव आ जाता है, मन है तुलसी जैसा और हर एक बोल कबीरी है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, तो मन है तुलसी जैसा, खड़े हमारे भाई जी आ जाइए शांतनु भाई जी, एक बार ताली आपके लिए बजा दें, मन है तुलसी जैसा और हर एक बोल कबीरी है। तो ऐसे हमारे प्यारे निकुंज भाई जी और शांतनु भाई जी के लिए जोरदार तालियां। भाई जी आपने बहुत गहराई से हम सबको दिव्य वाणी से अनुग्रहित किया है, तो कुछ कोई कहना चाह रहा था, भाई जी कह रहे थे तो कह सकते हैं जल्दी से, समय क्योंकि समाप्त हो चुका है हमारा। क्या कहना चाहते हैं भाई जी?
गुड न्यूज अर्थात ऐसा हो जिसको पढ़ करके व्यक्ति सारा दिन याद रखे, उसको उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने का उसको प्रेरणा मिले, हम तो इसको गुड न्यूज कहते हैं। तो ऐसा कुछ न कुछ आप शेयर करिए कि जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आए, कुछ भी आपको जो भी लगे, जरूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी से ही वो हो, परंतु पॉजिटिव हो जो पढ़कर उनको मन में लगे कि हाँ मेरा दिन बन गया आज।
भाई जी बस ये अंतिम आप क्योंकि समय हो चुका है, नहीं माइक में बोलिए ना भाई जी।
सभी को ओम शांति जी। मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिले से हूँ। लगभग आज से 15 साल मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। जैसे दीदी जी आपने बताया तो पहले और अब के पत्रकारिता में बहुत ही डिफिकल्ट है। हम पहले पेन कापी डायरी लेके निकल जाते थे और हमको ये भी पता नहीं होता था कि शाम को हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। और आजकल के इस इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन में, सोशल मीडिया के मतलब जमाने में, पत्रकारिता की होड़ इस कदर लग गई है अपने लोग की आरती बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज बस 2 मिनट में लगा देते हैं। और आजकल कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो आप कह रहे वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है, क्योंकि संसार में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, परंतु उससे नेगेटिव होने से पॉजिटिव जो है उसकी कोई छाप कहो या चमक कहो कम नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि अंधकार में चंद्रमा ऊपर आता है और चंद्रमा को अपने समय पे नीचे जाना है और सूरज को ऊपर आना ही है, तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये चलता ही रहेगा। मैंने पिछले साल भी ये कहा था कि प्रिंट जो है वो कभी भी मरेगा नहीं, और प्रिंट में काम करने वाला जो सैद्धांतिक पत्रकार है वो भी कभी मरेगा नहीं, वो था है और रहेगा ही। आपको अपने मार्ग पर विश्वास होना चाहिए। बाकी ये तो थोड़ा थोड़ा समय के लिए सब ट्रेंड आता है, पर वो चलता नहीं है लंबा, वो उगते नीचे जाते, ये चलता रहेगा जी। वो आपका वो सेशन होगा वो बहने बताएगी, मैं तो एक लाइन में इतना ही कहूंगा, हम स्पिरिचुअल कहते हैं जो, तो एनीथिंग कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट, आत्मा के साथ संलग्नित जो भी ज्ञान कहो, गुण कहो, प्रोसेस इसको, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता। और धर्म जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, पिता का धर्म है, पुत्र धर्म, शरीर से संलग्नित जो भी चीजें है वो उसको हम धर्म कह सकते हैं। उसमें प्रथा है, प्रोसेस है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाते हैं। अध्यात्म जो आत्मा से रिलेटेड है।
वाह, बहुत कारगर भी तो बहुत जोरदार।